नमस्कार, आज हम जमीनी लोकतंत्र की उस इकाई में झांक रहे हैं जो हम सबके जीवन से सबसे करीब से जुड़ी है, ग्राम पंचायत। और सवाल ये है कि गांव के लिए विकास योजनाएं बनती तो हैं, पर क्या वे वाकई गांव वालों की जरूरतों को दर्शाती हैं और जमीन पर उतरती हैं? हमारे सामने है ग्राम पंचायत विकास योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए प्रैक्टिशनर हैंडबुक के कुछ अंश। ये कोई किताबी दस्तावेज नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए गाइड है जो मैदान में इस काम को अंजाम देते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस हैंडबुक से वो मुख्य बातें निकालना जो बताती हैं कि एक असरदार और सबकी भागीदारी वाली ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP कैसे बने और लागू हो। क्या ये हैंडबुक वाकई उन चुनौतियों का हल बताती है जिनकी वजह से अक्सर ये योजनाएं सफल नहीं हो पाती? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से, ये GPDP आखिर है क्या बला और क्यों इस पर इतना जोर है?
बिल्कुल, देखिए GPDP की जड़ें उस 73वें संविधान संशोधन में हैं, जिसने पंचायतों को सीधे विकास के काम करने का अधिकार दिया, करीब 29 विषयों पर। तो GPDP को आप पंचायत का अपना मास्टर प्लान समझ सकते हैं, जो गांव की जरूरतों के हिसाब से बनता है, खासकर गरीब और कमजोर तबकों की मांगों को ध्यान में रखकर। मकसद है कि जो भी संसाधन पंचायत के पास हैं उनका सही इस्तेमाल हो, और अब इसे स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों यानी LSDG से भी जोड़ा गया है।
अच्छा, हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
जी हाँ, बिल्कुल, ताकि गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बड़ी चुनौतियों पर गांव के स्तर पर काम हो सके। प्रगति नापने के लिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब PDI जैसे पैमाने भी हैं।
सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर जमीनी हकीकत कुछ और होती है। क्या चुनौतियां हैं इस प्रक्रिया में जिनके बारे में हैंडबुक बात करती है?
हाँ, यही असल मुद्दा है। हैंडबुक मानती है कि GDP प्रक्रिया में कई दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी है लोगों की, खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों, महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी की कमी। योजनाएं तो बनती हैं पर उनकी आवाज अक्सर शामिल नहीं हो पाती। दूसरी बड़ी समस्या है योजनाओं का ऑनलाइन पोर्टल ई-ग्राम स्वराज पर ठीक से दर्ज न होना।
अच्छा, मतलब रिकॉर्डिंग की दिक्कत।
हाँ, जिससे पारदर्शिता और निगरानी मुश्किल हो जाती है, और सबसे अहम, योजनाओं का जमीन पर ठीक से लागू न हो पाना। हैंडबुक इन्हीं कमियों को दूर करने के मतलब व्यवहारिक रास्ते सुझाती है।
तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए हैंडबुक क्या नुस्खा देती है? तैयारी के स्तर पर क्या करने को कहा गया है?
हैंडबुक ना तैयारी पर बहुत जोर देती है, क्योंकि यही नींव रखी जाती है। इसमें पहली बात है, हर स्तर पर राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, जिम्मेदार अधिकारियों यानी नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति और उनकी भूमिका साफ करना।
सिर्फ नियुक्ति नहीं, बल्कि उन्हें पता हो कि करना क्या है।
बिल्कुल। दूसरी अहम चीज है समन्वय समितियां बनाना, खासकर जिला और ब्लॉक स्तर पर। इनमें अलग अलग सरकारी विभाग जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और गैर सरकारी संस्थाओं यानी CSO के लोग शामिल होते हैं, ताकि सब मिलकर काम कर सकें, अलग अलग नहीं। साथ ही विशेषज्ञों की टीमें मतलब रिसोर्स टीम्स ही बनाई जाती हैं, जो ट्रेनिंग और तकनीकी मदद देती हैं।
और गांव के स्तर पर, पंचायत लेवल पर क्या तैयारी होती है?
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत योजना और सुविधा टीम यानी GPPFT का गठन। हैंडबुक का एक मुख्य बिंदु ये है कि ये टीम सिर्फ पंचायत के चुने हुए सदस्यों या कर्मचारियों तक सीमित ना हो।
अच्छा,
इसे समावेशी होना चाहिए। इसमें पंचायत कर्मी, समुदाय से निकले VPRP फैसिलिटेटर, स्थायी समिति के सदस्य, कम से कम एक महिला जरूर, और संबंधित विभागों के जमीनी कार्यकर्ता या किसी स्थानीय संस्था CSO CBO के प्रतिनिधि जिनमें महिला जरूर हो, शामिल हो।
मतलब टीम ऐसी बने जिसमें गाँव की विविधता झलके और अलग अलग हुनर हो।
बिल्कुल, और सिर्फ टीम बनाना ही काफी नहीं, उन्हें तैयार भी करना होगा। यही क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का रोल आता है। हैंडबुक कहती है कि सभी जुड़े लोगों को, पंचायत सदस्य, GPPFT सदस्य, CBO प्रतिनिधि, सरकारी कर्मी, कुछ चीजों की अच्छी समझ होनी चाहिए।
जैसे कि
सतत विकास लक्ष्य, LSDGs क्या हैं, GDP प्रक्रिया क्या है, और सबसे जरूरी, महिलाओं और बच्चों को इस पूरी कवायद में कैसे शामिल करें। उन्हें महिला सभा और बाल सभा आयोजित करने के तरीके सिखाए जाते हैं।
अच्छा,
ये भी बताया जाता है कि पंचायत के पास कौन कौन से संसाधन हैं, सिर्फ सरकारी अनुदान ही नहीं बल्कि मानव संसाधन भी, और सहभागी योजना बनाने के तरीके जैसे सोशल मैपिंग या रिसोर्स मैपिंग, इनका इस्तेमाल कैसे करें।
हाँ, ये जरूरी है ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी,
बिल्कुल, ताकि वो भी अपनी बात रख सकें। और हाँ, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर डेटा एंट्री का प्रशिक्षण भी अहम है।
ठीक है, टीम बन गई, ट्रेनिंग हो गई, चलिए अब बात करते हैं
असल योजना बनाने की प्रक्रिया की। यहाँ चीजें कैसे दिलचस्प होती हैं, हैंडबुक क्या अलग बताती है?
हैंडबुक का सबसे बड़ा जोर योजना प्रक्रिया को वास्तव में सहभागी और समावेशी बनाने पर है। ये सिर्फ कहने की बात ना हो। इसकी शुरुआत होती है एक डिटेल्ड कैलेंडर बनाने से, जिसमें ग्राम सभा, महिला सभा, बाल सभा की तारीखें पहले से तय हों। एक खास बात है ग्राम समृद्धि ता बावरी योजना VPRP का एकीकरण। ये योजना है स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs द्वारा अपनी जरूरतों के आधार पर बनाई जाती हैं। हैंडबुक कहती है कि इन्हें GPDP बनाने से पहले तैयार कर लेना चाहिए।
पहले?
हाँ, पहले, और फिर GPDP में शामिल करना चाहिए ताकि महिलाओं की जरूरतें पीछे न छूट जाएं।
और आपने महिला सभा और बाल सभा का जिक्र किया, ये पारंपरिक ग्राम सभा से कैसे अलग हैं?
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक ग्राम सभाओं में अक्सर महिलाओं और बच्चों की आवाज दब जाती है या सुनी नहीं जाती। महिला सभा का आयोजन SHG के फेडरेशन मतलब VOCLF करते हैं, जिसमें गांव की सभी महिलाएं भाग ले सकती हैं, SHG सदस्य हों या ना हो।
अच्छा।
वहीं बाल सभा स्कूलों में बच्चों के अनुकूल माहौल में होती है, अक्सर बिना शिक्षकों की मौजूदगी के,
बिना टीचर के, ताकि बच्चे
ताकि बच्चे बेझिझक अपनी जरूरतें और विचार रख सकें। इनमें खेल और चित्रों का इस्तेमाल होता है। ये तरीके सुनिश्चित करते हैं कि योजना सिर्फ बड़ों या पुरुषों की न रह जाए।
अलग अलग समूहों की आवाज तो शामिल हो गई, लेकिन अक्सर सरकारी योजनाएं और विभाग अपनी अपनी दिशा में चलते हैं। इन्हें एक साथ कैसे लाया जाता है?
यही तो असली चुनौती है। बिल्कुल, और यही अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का विचार आता है, जो इस हैंडबुक का एक केंद्रीय तत्व है। हैंडबुक कहती है कि पंचायत स्तर पर एक संसाधन लिफाफा यानी रिसोर्स एनवेलप तैयार किया जाना चाहिए। इसमें सिर्फ सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वां वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन का पैसा ही नहीं,
बल्कि पंचायत के अपने स्रोत भी।
हाँ, पंचायत के अपने स्रोत, CSR फंड या दान से मिलने वाला पैसा भी शामिल हो। साथ ही मानव संसाधन यानी कौन कौन से सरकारी कर्मी या समुदाय के लोग उपलब्ध हैं, इसकी भी मैपिंग हो। फिर ग्राम पंचायत समन्वय समिति GPCC जैसी बैठकों में विभिन्न विभागों के लोग और समुदाय के प्रतिनिधि मिलकर तय करते हैं कि इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
इसका कोई उदाहरण है?
हाँ, हैंडबुक में छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक परिवार खेती और मछली पालन दोनों करना चाहता था। मनरेड़ा से खेत में तालाब बना, कृषि विभाग ने बीज दिए, मछली पालन विभाग ने मछली के बच्चे दिए और ऊर्जा विभाग यानी CRADA ने सिंचाई के लिए सोलर पंप लगा दिया।
वाओ, ये तो वाकई कमाल का समन्वय है।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग योजनाओं को जोड़कर किसी परिवार की पूरी जरूरत पूरी की जा सकती है।
ये अभिसरण वाला विचार तो वाकई असरदार लग रहा है। अगर ठीक से लागू हो, योजना बन गई, अब उसे रिकॉर्ड करने की बात। आपने शुरू में इसे एक चुनौती बताया था।
हाँ, योजना बना लेना एक बात है, उसे सही ढंग से दर्ज करना दूसरी। हैंडबुक इस पर बहुत जोर देती है कि सभी स्वीकृत योजनाओं को ई ग्राम स्वराज यानी EGS पोर्टल पर दर्ज किया जाए।
ये सिर्फ एक खानापूर्ति नहीं है,
इससे पारदर्शिता आती है। कोई भी देख सकता है कि पंचायत में क्या काम हो रहा है। इससे प्रगति की निगरानी करना आसान होता है और ये भविष्य की योजना बनाने के लिए एक डेटाबेस भी तैयार करता है। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण और नियमित डेटा एंट्री सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
यहाँ एक और पहलू है जिस पर हैंडबुक काफी रोशनी डालती है और वो मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प है। पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI और समुदाय आधारित संगठनों यानी CBOs, खासकर स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के बीच का तालमेल। इसे PRI-CBO अभिसरण कहा गया है।
PRI-CBO अभिसरण, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है?
आसान शब्दों में PRI यानी पंचायत के पास संवैधानिक ताकत और ढांचा है। CBOs यानी समुदाय के अपने संगठन जैसे SHG, इनके पास जमीनी पकड़ और लोगों को, खासकर महिलाओं और गरीबों को संगठित करने की ताकत है।
अच्छा।
अभिसरण का मतलब है इन दोनों ताकतों का मिलकर काम करना। हैंडबुक का तर्क है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो विकास ज्यादा प्रभावी और समावेशी होता है। ये तालमेल जमीन पर कैसे काम करता है, क्या हैंडबुक में इसके उदाहरण हैं?
हाँ, और यहीं से असली कहानी समझ आती है। हैंडबुक बताती है कि इसके लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे SHG फेडरेशन को ट्रेनिंग देना ताकि वे योजना बनाने में हिस्सा ले सकें, GPC जैसे मंच बनाना जहां दोनों पक्ष मिलकर बात कर सकें, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिला पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूत करना
और पंचायत की सेवाएं बेहतर करना।
जी हाँ, इसका असर दिखाने के लिए हैंडबुक में कुछ सच्ची कहानियां हैं, जैसे झारखंड के अराजू पंचायत के दोधो मांझी की कहानी। दोधो जी ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं और सालों से सरकारी योजनाओं से वंचित थे, आधार कार्ड तक नहीं था। लेकिन CBO नेटवर्क से जुड़े ग्राम पंचायत हेल्प डेस्क, GPHD कैडर और नागरिक सहायता केंद्र NSK की मदद से और पंचायत द्वारा आयोजित एक सरकारी शिविर के माध्यम से उन्हें न केवल आधार कार्ड मिला बल्कि पेंशन भी शुरू हुई।
ये तो बहुत बढ़िया हुआ।
यह पंचायत PRI ने मंच दिया और CBO ने दोधो जी की पहचान कर उन तक मदद पहुँचाई। यह दिखाता है कि यह तालमेल कैसे सबसे जरूरतमंदों तक पहुँच सकता है।
ये दोधो मांझी वाली कहानी वाकई छू लेने वाली है। ये दिखाती है कि कैसे व्यवस्था और समुदाय मिलकर किसी की जिंदगी बदल सकते हैं।
बिल्कुल, ऐसी एक और कहानी साबेहा खातून की है, जो विधवा होने के बाद बहुत मुश्किल में थी। उनके पास ना राशन कार्ड था ना पेंशन। फिर GPHD, SHG फेडरेशन, VO और NSK ने मिलकर उनकी मदद की, दस्तावेज बनवाए और सरकारी योजनाओं से जोड़ा। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, यह मानवीय गरिमा व अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम है, जो इस अभिसरण से संभव हो पाता है।
हैंडबुक में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी EWRs की भूमिका पर भी काफी जोर दिया गया है ना?
हाँ, और ये बहुत जरूरी है। भारत में आज करीब 14.5 लाख महिलाएं पंचायतों में चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। ये आरक्षण एक क्रांति है, लेकिन हैंडबुक मानती है कि सिर्फ संख्या काफी नहीं है।
सही बात है।
इन महिला प्रतिनिधियों को वास्तव में सशक्त बनाने और उनके नेतृत्व को प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि वे सिर्फ नाम की प्रतिनिधि न रह जाएं।
तो उन्हें प्रभावी बनाने के लिए हैंडबुक क्या तरीके सुझाती है?
कई व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं। पहला, उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, जिसमें सिर्फ योजनाओं की जानकारी ना हो बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने, लोगों के सामने बोलने यानी पब्लिक स्पीकिंग और सरकारी बाबुओं से बात करने जैसे कौशल मतलब सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
शी रिप्रेजेंट्स जैसे अभियानों से सफल महिला नेताओं की कहानियों से उन्हें प्रेरणा देना। दूसरा, उन्हें विभागों के साथ तालमेल बिठाने और योजनाओं का लाभ अपने गांव तक लाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाना, ताकि वे ई-ग्राम स्वराज जैसे पोर्टल खुद इस्तेमाल कर सकें। और चौथा, उन्हें गांव की विकास योजना मतलब VDP बनाने और आजीविका से जुड़ी पहलों जैसे बीज बॉल वितरण, SHG गठन का नेतृत्व करने के मौके देना।
अच्छा,
इसके लिए एक विस्तृत 12 महीने के ट्रेनिंग कैलेंडर का सुझाव भी है, जो दिखाता है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
यानी मकसद सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि वास्तविक नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। हैंडबुक में क्या कुछ और नए या अनोखे तरीकों बेस्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र है जो दूसरी पंचायतें अपना सकती हैं?
हाँ, कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे राजस्थान के वासा पंचायत का किस्सा, जहाँ GIS यानी सैटेलाइट नक्शों का इस्तेमाल करके सहभागी योजना बनाई गई।
GIS से वो कैसे?
गांव वालों ने खुद नक्शों पर निशान लगाकर बताया कि कहां पानी की जरूरत है, कहां रास्ता बनना है। इससे योजना सटीक भी बनी और लोगों के लिए, खासकर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझना और जुड़ना आसान हो गया। एक और उदाहरण है ग्राम पंचायत समन्वय समिति यानी GPCC का प्रभावी इस्तेमाल, जैसा झारखंड के रोले और कंजिया पंचायतों में हुआ। वहां GPCC सिर्फ मीटिंग की जगह नहीं रही बल्कि विभागों, पंचायत सदस्यों और समुदाय के बीच लगातार बातचीत, समस्याओं के हल और कामों की निगरानी का एक एक्टिव अड्डा बन गई।
अड्डा बन गई मतलब बहुत सक्रिय हो गई।
हाँ बिल्कुल।
इससे काम तेज हुए और लोगों का भरोसा बढ़ा। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सही सोच और तरीकों से GPDP को सच में असरदार बनाया जा सकता है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए, इस हैंडबुक से हम क्या मुख्य सबक ले सकते हैं, इसका सार क्या है?
सार ये है कि GPDP प्रक्रिया भले ही जटिल लगे, लेकिन ये जमीनी लोकतंत्र और समावेशी विकास की रीढ़ है। हैंडबुक के हिसाब से सफलता के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। एक व्यवस्थित, समय पर चलने वाली प्रक्रिया, सभी स्तरों पर अच्छी ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण, योजना बनाने में सबकी, खासकर महिलाओं, बच्चों और वंचित समूहों की सच्ची भागीदारी।
हाँ, ये भागीदारी बहुत अहम है।
बिल्कुल। फिर सरकारी विभागों और योजनाओं का प्रभावी तालमेल यानी अभिसरण, और सबसे जरूरी, एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व जिसमें महिला नेताओं की भूमिका अहम हो। PRI, CBO, अभिसरण जैसे मॉडल दिखाते हैं कि संस्थागत ताकत और समुदाय की आवाज मिलकर क्या कमाल कर सकती हैं। इसका एक शक्तिशाली औजार बन सकता है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। हैंडबुक में बताई गई ये सफल कहानियां और बेहतरीन तरीके जैसे दोधो मांझी तक पहुंचना या GIS का इस्तेमाल बहुत प्रेरणा देते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि भागीदारी, अभिसरण और समावेश की ये भावना जो इन सफल उदाहरणों में दिखती है, वो कुछ गिनी चुनी पंचायतों तक की क्यों सीमित रहे?
सही सवाल है।
इसे देश भर की हर पंचायत के काम करने का सामान्य तरीका कैसे बनाया जा सकता है? क्या ऐसा कोई सिस्टम या प्रोत्साहन हो सकता है जो ये पक्का करे कि हर पंचायत सचमुच अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक जिम्मेदार और जीवंत मंच बने, न कि सिर्फ ऊपर से आई योजनाओं को लागू करने वाली एक एजेंसी?
ये वाकई एक गहरा सवाल है कि इन बेहतरीन मॉडलों को कैसे आम बनाया जाए। इस दिलचस्प और अहम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के इस दुनिया को समझने में मदद मिली होगी और कुछ सोचने को मिला होगा।